सातवां भाग साकेत का महाकाव्यत्व। महाकाव्य ख्यातवित्त पर आधारित ऐसे कृति को कहते हैं जिसमें किसी जात की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परंपराओं का सफल समावेश किया गया हो और जो अपनी उदात्त शैली तथा व्यापक दृष्टि के कारण युग युग की प्रेरक होती है। बाबू गुलाब राय ने महाकाव्य की परिभाषा इस प्रकार की है, महाकाव्य वह विषय प्रधान काव्य है जिसमें अपेक्षाकृत बड़े आकार में जाति में प्रतिष्ठित और लोकप्रिय नायक के उदात्त कार्यों द्वारा जातीय भावनाओं आदर्शों और आकांक्षाओं का उद्घाटन किया जाता है। संस्कृत के मनीषियों द्वारा दिए गए महाकाव्य के लक्षण इस प्रकार हैं। पहला, महाकाव्य सर्गबद्ध होना चाहिए। सर्ग की संख्या 8 से अधिक होनी चाहिए। प्रत्येक सर्ग में एक ही छंद का प्रयोग होना चाहिए। महाकाव्य का आरंभ मंगलाचरण से होना चाहिए। दूसरा, कथा वस्तु लोक प्रख्यात महदाकार तथा कमबद्ध होनी चाहिए। तीसरा, नायक अथवा मुख्य पात्र धीरोदात अर्थात धीरता गंभीरता तथा ओज आदि महनीय गुणों से संपन्न होना चाहिए। चौथा, श्रृंगार वीर शांत तथा करुण में से कोई एक अंगी तथा से सभी रस अंग रूप में आने चाहिए। पांचवा, महाकाव्य का लक्ष्य फल चतुष्टय धर्मार्थ का मोक्ष होना चाहिए। छठा, शैली विस्तार गर्भा गांभीर्य पूरिता तथा अलंकार पूर्ण होनी चाहिए। महाकाव्य संबंधी पाश्चात्य दृष्टिकोण। प्रथम, महाकाव्य की कथा आकार में बृहत होनी चाहिए। दूसरा, महाकाव्य की शैली वर्णनात्मक होनी चाहिए। तीसरा, विषय परंपरा प्रतिष्ठित व लोकप्रिय होना चाहिए। चौथा, पात्रों में विविधता वैयक्तिकता तथा नयापन हो। पांचवा, महाकाव्य की भाषा एवं अभिव्यंजना प्रणाली शालीन हो। छठा, संपूर्ण कथा नायक केंद्रित होनी चाहिए। सातवां, विचारों में स्वाभाविकता तथा उदात्त भावना हो। आठवां, व्यक्ति नहीं समाज का विचित्रण होना चाहिए। नौवां, कथा वस्तु सुसंगठित हो। संस्कृत आचार्यों द्वारा महाकाव्य के लक्षणों पर देखा जाए तो साकेत में मंगलाचरण को स्थान दिया गया है। सर्गों की संख्या 12 है। नायकत्व की दृष्टि से उर्मिला प्रमुख पात्र है। यदि साकेत का नायक राम को माना जाए तब तो उनके धीरोदात्त होने में कोई संदेह नहीं है, परंतु लक्ष्मण धीरोदात्त नायक सिद्ध होते हैं धीरोधत्त नायक सिद्ध होते हैं। एक सर्ग प्रायः एक छंद में लिखा गया है और अंत में छंद परिवर्तन है। श्रृंगार रस की प्रधानता है तथा अन्य रसों का भी यथास्थान समावेश हुआ है। अंतिम फल के रूप में धर्म को स्वीकार किया गया है। संध्या प्रभात षट ऋतु आदि प्राकृतिक वर्णन यथास्थान किया गया है। इस तरह महाकाव्य लक्षणों का समावेश साकेत में हुआ है। किसी भी कृति को महाकाव्य बनने में जो प्रवणता धारण करनी पड़ती है साकेत उसे नहीं धारण कर सका है। अतः इसी कारण महाकाव्य को लेकर विद्वानों में मतभेद है। विद्वानों का मत, हिंदी के मूर्धन्य आलोचक पंडित आचार्य पंडित रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से साकेत महाकाव्य न होकर एक बड़ा प्रबंध काव्य है। डॉक्टर नगेंद्र उसे जीवन काव्य कहते हैं तथा डॉक्टर शंभुनाथ ने उसे बृहत प्रबंध काव्य की संज्ञा दी है। दूसरी ओर इसके विपरीत पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे महाकाव्य बताते हैं और आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के शब्दों में यह महाकाव्य ही नहीं आधुनिक हिंदी युग प्रवर्तक महाकाव्य है। पंडित विश्वनाथ मिश्र हमारा ध्यान तीसरी काव्यकोट की ओर आकृष्ट करते हैं और इसे महाकाव्य व बृहत प्रबंध काव्य न बताकर एकार्थ काव्य कहते हैं। उनके अनुसार महाकाव्य में कथा प्रवाह विविध भंगिमाओं के साथ मोड़ लेता है, आगे बढ़ता है, किंतु एकार्थ काव्य में कथा प्रवाह के मोड़ कम होते हैं। अधिकतर वर्णनों या व्यंजनाओं पर ही कवि की दृष्टि रहती है। इस दृष्टि से साकेत एक अर्थ काव्य है। स्वयं मैथिली शरणगुप्त के शब्दों में महाकाव्य के कितने ही विषय कवि पर एक प्रकार का दबाव डालते हैं। जिस कथा में उनकी आवश्यकता न हो उसमें ही उन्हें लाने की से अप्रासंगिकता का डर है, पर उनके बिना महाकाव्यत्व नहीं रहता। वन विहार वर्णन, आखेट वर्णन और समुद्र आदि के वर्णन सभी महाकाव्यों के लिए आवश्यक हैं, परंतु इस विषय में परतंत्र रहना उचित नहीं। आचार्य विचारकों के परस्पर विरोधी मतों को देखकर साकेत के महाकाव्यत्व के संबंध विचित्र स्थिति खड़ी हो जाती है। अतः डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने अपनी आधुनिक दृष्टि से महाकाव्यों के जो लक्षण निश्चित किए हैं, उसके अनुसार साकेत के महाकाव्यत्व पर विचार किया जा रहा है, जो इस प्रकार है। पहला, उद्देश्य और प्रेरणा। उर्मिला और कैकेयी के चरित्रों के प्रति न्याय करना और भगवान के चरित्रों में अनन्य श्रद्धा निवेदित करना कवि का प्रमुख उद्देश्य था। साकेत से पूर्व रामकथा का जो रूप था, गुप्त जी ने उसे अपने उद्देश्य के अनुसार परिवर्तित कर लिया। युग का वैचारिक संस्पर्श भी काव्य को प्रणीत करने में कवि की प्रेरणा का आधार बना। साकेत से पूर्व हरियोध के प्रिय प्रवास की रचना हुई थी, जिसमें कृष्ण को एक ऐसे लोकनायक के रूप में कवि ने प्रस्तुत किया था, जो मानव के समस्त उदात्त गुणों से संपन्न था और जिसमें लोकरंजन के साथ साथ लोकारक्षण की भी पर्याप्त क्षमता थी। इससे गुप्त जी ने प्रेरणा ली। आशय यह है कि गुप्त जी की काव्य प्रतिभा, साहित्यिक चेतना और सांस्कृतिक मनोभावना महाकाव्य के निर्माण करने में सक्षम है। दूसरा, गुरुत्व, गांभीर्य और महत्व। साकेत का विचार पक्ष सशक्त और ऊंचा है। कवि ने नर की ईश्वरता का आख्यान प्रस्तुत कर अपनी कृति में गुरुत्व भर दिया है। संपूर्ण काव्य में भाव पक्ष की प्रधानता होने के कारण एक विशिष्ट गांभीर्य का आभास मिलता है। यद्यपि वह विरूपायित वेश में है, कवि का अभिव्यक्ति कौशल अधिक सशक्त नहीं है। उसी से प्रभावान्विति में हल्कापन आ गया है। फिर भी कुल मिलाकर कृति के गुरुत्व, गांभीर्य और महत्व पर कोई विशेष आँच नहीं आती। तीसरा, महत्व, कार्य और युग जीवन का समग्र चित्र। साकेत में जीवन का जो समग्र चित्र प्रस्तुत किया गया, वह अन्यत्र नहीं है। इसमें भारतीय संस्कृति और जीवन के आदर्श को उपस्थित किया गया है। डॉक्टर कमलाकांत पाठक के दृष्टि में साकेत का प्रधान पात्री है उर्मिला और कथा की चरम सीमा है पुनर्मिलन। उसके लिए जो महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हुआ, वह सांस्कृतिक विजय और धर्म संस्थापना का कार्य है। मेघनाथवत तो प्रत्यक्ष घटना मात्र है। उर्मिला की प्रेम कथा के माध्यम से नवयुग की सांस्कृतिक मनोभावना अभिव्यक्त हुई है। कवि ने समग्र जीवन का चित्रण अवश्य किया है, पर पारिवारिक सीमा के भीतर रहकर युग जीवन के संबंध में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि कवि व्यापक भावना को लेकर युग जीवन का चित्रण करता है। उसकी जीवन दृष्टि उस युग की होती है, न कि काव्य विषय ही उस युग का। आचार्य वाजपेयी का कथन है, युग के विकासोन्मुख जीवन का साक्षात करने और उसे वाणी का परिधान पहनाकर नयनाभिराम देने के कारण इस युग में गुप्त जी जनमानस के प्रथम कृति कवि कहलाए जाएंगे। साकेत पर आधुनिक जीवन की छाप है। अयोध्या के जिस संपन्न समाज का वर्णन कवि करता है, वस्तुतः वह गांधी जी के राम राज्य की ही एक झांकी है। साकेत का कवि प्रजातंत्र में विश्वास करता है। वह कहता है, राजपद ही क्यों न अब टूट जाए, अथवा विगत ही नरपति रहे नरमा। कवि के इन शब्दों में प्रजातंत्र के प्रति दृढ़ आस्था है। आधुनिक सत्याग्रह के रूप में हमें राम वनगमन के समय देखने को मिलता है। इसी प्रकार अयोध्यावासियों की रण सज्जा में देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता का सजीव चित्र उभरा है। साकेत में जमाखोर व्यक्तियों के प्रति राम स्वयं कहते हैं, जो संग्रह करके त्याग नहीं करता है, वह 10 लोक धन लूट लूट धरता है। आधुनिक युग में नारी के प्रति जो विचारधारा परिव्याप्त है, साकेत में उसी विचारधारा को ग्रहण किया गया है। नारी के प्रति आधुनिक क्रांतिकारी विचारधारा सीता के उद्गारों में प्रकट होती है। औरों के हाथ यहाँ नहीं पलती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूँ। अभितु दान बहादुर पाठक ने अपेक्ष किया है कि पति पत्नी का मिलन महाकाव्य का आधार नहीं बन सकता, साकेत के द्वारा न त्रेता युग का जीवन ही अंकित हो सका है और न ही गुप्त जी के युग का ही। दोनों युगों के व्यामोह में पड़कर कवि ने एक विचित्र चित्र प्रस्तुत किया है, जिससे किसी भी प्रकार की पूर्णता का आभास नहीं मिलता। वास्तव में कवि ने साकेत द्वारा वह विस्तृत उपयोगिता पूर्ण संदेश नहीं दिया जो हमारे वर्तमान युग की भूख को बुझा सके। चौथा, सुसंगठित जीवंत कथानक। साकेत की कथा वस्तु जीवंत होकर भी सुसंगठित नहीं है। कथा सर्गबद्ध है किंतु उसका वस्तु संगठन शिथिल है। कवि कई स्थलों पर उर्मिला के विलाप के कारण मूल कथा ही छोड़ बैठा है। कहीं कहीं तो उसकी वैष्णव भावना मूल कथा में बाधक बनी है। उर्मिला, लक्ष्मण, राम, सीता की प्रासंगिक कथाएं उचित ढंग से समायोजित नहीं हैं। दो कथाओं में किसको प्रधान तथा किसको गौड़ कहा जाए यह निर्णय करना कठिन है। अतः दो कथाओं के एक साथ उपस्थित हो जाने से वस्तु संगठन में अव्यवस्था उत्पन्न हो गई है। उसमें नाटक और गीत काव्य के तत्वों का सम्मिश्रण हो गया है, जिससे उसका घटना प्रवाह और सक्रियता संगठित हो गई है। संपूर्ण कथा प्रख्यात है, पर कवि कल्पना ने उसके कोमल पार्श्व को उभारा है। पांचवा, महत्वपूर्ण नायक। साकेत में उर्मिला को नायिका बनाया गया, पर घटनाओं के संचालक राम ही रहे। उर्मिला का चरित्र महान है और राम नर ईश्वरता के प्रतीक हैं। वे सचमुच मानवता के अभ्युत्थान प्रतिनिधि हैं और उर्मिला नारी जीवन के गौरव का प्रतीक हैं। राम का चरित्र अस्थिर है और उर्मिला की गतिशीलता, फिर भी उर्मिला नायिका है, उसी का चरित्र सर्वप्रधान है। साकेत में वर्णित प्रत्येक पात्र की अपनी निजी विशेषताएं हैं। यह काव्य राम काव्य का विकास अवश्य है, किंतु अपनी नवीन उद्भावनाओं और मानवीय चरित्रों के सृजन के कारण कवि को परंपरा का परित्याग अवश्य करना पड़ा है। कवि कहता है, राम तुम मानो हो, ईश्वर नहीं हो क्या। छठवां, गरिमा में उदात्त शैली। महाकाव्य की शैली में गंभीरता, उदात्तता, कांतिमता, शक्तिमत्ता और प्राणवत्ता के गुण होने चाहिए। साकेत की शैली में साधुता, शक्ति, प्रसादत्व तथा कांति कोमलता, मार्दव और लालित्य तो है ही, पर वह प्रौढ़, प्रांजल तथा गंभीर और उदात्त नहीं है। शैलीगत दुर्बलता ने ही साकेत को बहुत कुछ प्राणवान होने से रोक लिया है। जिसे जहाँ परिस्थिति गंभीर हो जाता है, वहाँ कवि विशद वर्णन नहीं करता, अपितु मौन से काम लेता है। अपितु कथा वर्णन में साकेत के कथोपकथन, दृश्य चित्रण आदि की सहायता तो ली ही है, साथ ही स्वगत और भाषण का भी प्रयोग किया है। इसमें अभिव्यंजना की मनोरम छटा, लाक्षणिकता तथा मूर्तिमता आदि का समावेश है। कवि सरल सजीव चित्र प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त है। अतः साकेत की शैली अनेक दोषों के बावजूद महाकाव्योचित है। सातवां, प्रभावान्विति और रस व्यंजना। किसी काव्य की प्रभावान्विति उसके महत एवं केंद्रस्थ कार्य के अनुरूप होती है। यदि कवि की अभिव्यक्ति कला सहज, प्राणमयी और भावानुगामिनी नहीं है, तो महत कार्य होते हुए भी उसके द्वारा काव्य में वांछित प्रभावान्विति नहीं उत्पन्न हो सकेगी। साकेत में भी प्रभावान्विति के दृष्टि से निर्बल है, या पाठकों के हृदय का स्पर्श करके भी अस्थायी प्रभाव नहीं छोड़ पाती। जहाँ तक रस का सवाल है, साकेत काफ़ी हद तक सफल काव्य है। साकेत की मुख्य घटना उर्मिला का विरह है। कवि आद्योपांत उर्मिला के स्वरूप की रक्षा करता रहा है। साकेत में उर्मिला मुख्य पात्र है, उसके संबंध में काव्य का अंगिरस स्वीकार किया जाना चाहिए। इस दृष्टि से श्रृंगार ही काव्य का अंगिरस है। संयोग और वियोग श्रृंगार के दोनों पक्षों को साकेत में उचित स्थान मिला है। उर्मिला लक्ष्मण संवाद में संयोग श्रृंगार का चित्र द्रष्टव्य है। रे सुभाषी, बोल क्यों चुप हो रहा। इसमें लक्ष्मण के जगाने पर उर्मिला प्रश्न करती है, लक्ष्मण उत्तर देते हैं, नाक का मोती अधर की कांति से बीज दाढ़िम का समझकर भ्रांति से देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य यह सुख कौन है। प्रस्तुत संयोग चित्र कितना मधुर सजीव एवं सशक्त है, दूसरी तरफ साकेत विरह काव्य है, अतः विप्लम्ब श्रृंगार की छटा सर्वत्र विद्यमान है। विरह की काम दशाओं के वर्णन में कवि ने कौशल दिखाई है, उन्माद की अवस्था का एक उदाहरण दृष्टव्य है। जिधर पीठ दे दीठ फेरती, उधर मैं तुम्हें हीठ ठीठ हेरती, यह उन्माद की चरम सीमा है, अतः करुण विप्रम्भ ही साकेत का अंगीरस है। आठवां, जीवन शक्ति और प्राणवत्ता। साकेत में जीवन शक्ति और प्राणवत्ता की कमी नहीं है, वह जीवन की कर्मण्यता का उत्साह, भोगादि का निग्रह का साहस, त्याग करने की शक्ति और चरित्रोत्कर्ष की आशा अवलंबन प्रदान करता है। भारतीय संस्कृति का उत्थान, विश्व बंधुत्व की अनुभूति, असत का पराभव, मानव गुणों का समुच्चय तथा धर्म की अथवा सत्य की विजय का उद्घोष करने वाली कृति निष्प्राण नहीं हो सकती। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि साकेत में महाकाव्योचित विचारधारा, शैली एवं चरित्रण विद्यमान है। कथा प्रवाह में भावात्मकता के कारण बाधा अवश्य पड़ी है, परंतु साकेत की भाव संपत्ति किसी महाकाव्य से घटकर नहीं। साकेत आधुनिक हिंदी काव्य व्योम का ज्वाज्वल्यमान नक्षत्र है, जिसका प्रकाश बहुत दिनों तक हिंदी जगत को विमुग्ध करता रहेगा। यह भाग यहीं पर समाप्त होता है।